मरकुस की मार्फत इंजील बाब 14। फसा और बेखमीरी रोटी की ईद करीब आ गई थी, सिर्फ दो दिन रह गए थे। रहनुमा इमाम और शरीयत के उलमा ईसा को किसी चालाकी से गिरफ्तार करके कत्ल करने की तलाश में थे। उन्होंने कहा, लेकिन ये ईद के दौरान नहीं होना चाहिए, ऐसा न हो कि आवाम में हलचल मच जाए। इतने में ईसा बैतनिया आकर एक आदमी के घर में दाखिल हुआ जो किसी वक्त कोढ़ का मरीज था। उसका नाम शमौन था। ईसा खाना खाने के लिए बैठ गया तो एक औरत आई। उसके पास खालिस जटामासी के निहायत कीमती अत्र का इत्रदान था। उसका सर तोड़कर उसने अत्र ईसा के सर पर उंडेल दिया। हाजरीन में से कुछ नाराज हुए, इतना कीमती अत्र जाया करने की क्या जरूरत थी। इसकी कीमत कम अज कम चांदी के 300 सिक्के थी। अगर इसे बेचा जाता तो इसके पैसे गरीबों को दिए जा सकते थे। ऐसी बातें करते हुए उन्होंने उसे झिड़का, लेकिन ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो, तुम इसे क्यों तंग कर रहे हो। इसने तो मेरे लिए एक नेक काम किया है। गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे और तुम जब भी चाहो उनकी मदद कर सकोगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जो कुछ वो कर सकती थी उसने किया है। मुझ पर अत्र उंडेलने से वो मुकर्ररा वक्त से पहले मेरे बदन को दफनाने के लिए तैयार कर चुकी है। मैं तुमको सच बताता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ भी अल्लाह की खुशखबरी का ऐलान किया जाएगा, वहाँ लोग इस खातून को याद करके वो कुछ सुनाएंगे जो इसने किया है। फिर यहूदा इस्करियोती, जो 12 शागिर्दों में से एक था, रहनुमा इमामों के पास गया ताकि ईसा को उनके हवाले करने की बाबत बात करे। उसके आने का मकसद सुनकर वो खुश हुए और उसे पैसे देने का वादा किया। चुनांचे वो ईसा को उनके हवाले करने का मौका ढूंढने लगा। बेखमीरी रोटी की ईद आई, जब लोग फसह के लिए मेमने को कुर्बान करते थे। ईसा के शागिर्दों ने उससे पूछा, हम कहाँ आपके लिए फसह का खाना तैयार करें। चुनांचे ईसा ने उनमें से दो को ये हिदायत देकर यरूशलेम भेज दिया कि जब तुम शहर में दाखिल होगे तो तुम्हारी मुलाकात एक आदमी से होगी जो पानी का घड़ा उठाए चल रहा होगा, उसके पीछे हो लेना। जिस घर में वो दाखिल हो उसके मालिक से कहना, उस्ताद आपसे पूछते हैं कि वो कमरा कहाँ है जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह का खाना खाऊं। वो तुम्हें दूसरी मंजिल पर एक बड़ा और सजा हुआ कमरा दिखाएगा, वो तैयार होगा। हमारे लिए फसह का खाना वहीं तैयार करना। दोनों चले गए तो शहर में दाखिल होकर सब कुछ वैसा ही पाया जैसा ईसा ने उन्हें बताया था। फिर उन्होंने फसह का खाना तैयार किया। शाम के वक्त ईसा 12 शागिर्दों समेत वहां पहुंच गया। जब वो मेज पर बैठे खाना खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमको सच बताता हूँ, तुम में से एक जो मेरे साथ खाना खा रहा है मुझे दुश्मन के हवाले कर देगा। शागिर्द ये सुनकर गमगीन हुए। बारी बारी उन्होंने उससे पूछा, मैं तो नहीं हूँ। ईसा ने जवाब दिया, तुम 12 में से एक है। वो मेरे साथ अपनी रोटी सालन के बर्तन में डाल रहा है। इब्ने आदम तो कूच कर जाएगा जिस तरह कलामे मुकद्दस में लिखा है, लेकिन उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से उसे दुश्मन के हवाले कर दिया जाएगा। उसके लिए बेहतर ये होता कि वो कभी पैदा ही न होता। खाने के दौरान ईसा ने रोटी लेकर शुक्रगुजारी की, दुआ की और उसे टुकड़े करके शागिर्दों को दे दिया। उसने कहा, ये लो, ये मेरा बदन है। फिर उसने मै का प्याला लेकर शुक्रगुजारी की, दुआ की और उसे उन्हें दे दिया। सबने उसमें से पी लिया। उसने उनसे कहा, ये मेरा खून है, नए अहद का वो खून जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमको सच बताता हूँ कि अब से मैं अंगूर का रस नहीं पीऊंगा, क्योंकि अगली दफा इसे नए सिरे से अल्लाह की बादशाही में ही पीऊंगा। फिर वो एक जबूर गाकर निकले और जैतून के पहाड़ के पास पहुंचे। ईसा ने उन्हें बताया, तुम सब बरगश्ता हो जाओगे, क्योंकि कलामे मुकद्दस में अल्लाह फरमाता है, मैं चरवाहे को मार डालूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, लेकिन अपने जी उठने के बाद मैं तुम्हारे आगे आगे गलील पहुंचूंगा। पतरस ने एतराज किया, दूसरे बेशक बरगश्ता हो जाए लेकिन मैं कभी न होऊंगा। ईसा ने जवाब दिया, मैं तुझे सच बताता हूँ, इसी रात मुर्ख के दूसरी दफा बाग देने से पहले पहले तू तीन बार मुझे जानने से इनकार कर चुका होगा। पतरस ने इसरार किया, हरगिज नहीं, मैं आपको जानने से कभी इनकार नहीं करूंगा, चाहे मुझे आपके साथ मरना भी पड़े। दूसरों ने भी यही कुछ कहा। वो एक बाग में पहुंचे जिसका नाम गतसमनी था। ईसा ने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं दुआ करने के लिए आगे जाता हूँ। उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया। वहाँ वो घबरा कर बेकरार होने लगा। उसने उनसे कहा, मैं दुख से इतना दबा हुआ हूँ कि मरने को हूँ, यहाँ ठहर कर जागते रहो। कुछ आगे जाकर वो जमीन पर गिर गया और दुआ करने लगा कि अगर मुमकिन हो तो मुझे आने वाली घड़ियों की तकलीफ से गुजरना न पड़े। उसने कहा, ऐ अब्बा, ऐ बाप, तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है, दुख का ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो अपने शागिर्दों के पास वापस आया तो देखा कि वो सो रहे हैं। उसने पतरस से कहा, शमौन, क्या तू सो रहा है? क्या तू एक घंटा भी नहीं जाग सका? जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में न पड़ो, क्योंकि रूह तो तैयार है लेकिन जिस्म कमजोर। एक बार फिर उसने जाकर वही दुआ की जो पहले की थी। जब वापस आया तो दोबारा देखा कि वो सो रहे हैं, क्योंकि नींद की बदौलत उनकी आंखें बोझल थीं। वो नहीं जानते थे कि क्या जवाब दें। जब ईसा तीसरी बार वापस आया तो उसने उनसे कहा, तुम अभी तक सो और आराम कर रहे हो? बस काफी है, वक्त आ गया है, देखो इब्ने आदम को गुनाहगारों के हवाले किया जा रहा है, उठो आओ चलें, देखो मुझे दुश्मन के हवाले करने वाला करीब आ चुका है। वो अभी ये बात कर ही रहा था कि यहूदा पहुंच गया जो 12 शागिर्दों में से एक था। उसके साथ तलवारों और लाठियों से लैस आदमियों का हुजूम था। उन्हें रहनुमा इमामों, शरीयत के उलमा और बुजुर्गों ने भेजा था। इस गद्दार यहूदा ने उन्हें एक इम्तियाजी निशान दिया था कि जिसको मैं बोसा दूं वही ईसा है, उसे गिरफ्तार करके ले जाएं। जो ही वो पहुंचे यहूदा ईसा के पास गया और उस्ताद कहकर उसे बोसा दिया। इस पर उन्होंने उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ईसा के पास खड़े एक शख्स ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और इमाम आजम के गुलाम को मारकर उसका कान उड़ा दिया। ईसा ने उनसे पूछा, क्या मैं डाकू हूँ कि तुम तलवारें और लाठियां लिए मुझे गिरफ्तार करने निकले हो? मैं तो रोजाना बैतुल मुकद्दस में तुम्हारे पास था और तालीम देता रहा, मगर तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन ये इसलिए हो रहा है ताकि कलाम मुकद्दस की बातें पूरी हो जाएं। फिर सब के सब उसे छोड़कर भाग गए, लेकिन एक नौजवान ईसा के पीछे पीछे चलता रहा जो सिर्फ चादर ओढ़े हुए था। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो चादर छोड़कर नंगी हालत में भाग गया। वो ईसा को इमाम आजम के पास ले गए जहां तमाम रहनुमा, इमाम, बुजुर्ग और शरीयत के उलमा भी जमा थे। इतने में पतरस कुछ फासले पर ईसा के पीछे पीछे इमाम आजम के सहन तक पहुंच गया। वहां वो मुलाजिमों के साथ बैठकर आग तापने लगा। मकान के अंदर रहनुमा, इमाम और यहूदी अदालत आलिया के तमाम अफराद ईसा के खिलाफ गवाहियां ढूंढ रहे थे ताकि उसे सजाए मौत दिलवा सकें, लेकिन कोई गवाही न मिली। काफी लोगों ने उसके खिलाफ झूठी गवाही तो दी लेकिन उनके बयान एक दूसरे के मुतजाद थे। आखिरकार बाज ने खड़े होकर ये झूठी गवाही दी, हमने इसे ये कहते सुना है कि मैं इंसान के हाथों के बने इस बैतुल मकदस को ढाकर 3 दिन के अंदर अंदर नया मकदिस तामीर करूंगा, एक ऐसा मकदिस जो इंसान के हाथ नहीं बनाएंगे। लेकिन उनकी गवाहियां भी एक दूसरे से मुतजाद थीं। फिर इमाम आजम ने हाजरीन के सामने खड़े होकर ईसा से पूछा, क्या तू कोई जवाब नहीं देगा? ये क्या गवाहियां हैं جو یہ لوگ تیرے خلاف دے رہے ہیں؟ لیکن عیسیٰ خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ امام اعظم نے اس سے ایک اور سوال کیا، کیا تو الحمید کا فرزند مسیح ہے؟ عیسیٰ نے کہا، جی میں ہوں، اور آئندہ تم ابن آدم کو قادر مطلب کے دہنے ہاتھ بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے ہوئے دیکھو گے۔ امام اعظم نے رنجش کا اظہار کر کے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور کہا، ہمیں مزید گواہوں کی کیا ضرورت رہی؟ آپ نے خود سن لیا ہے کہ اس نے کفر بکا ہے، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ سب نے اسے سزائے موت کے لائق قرار دیا، پھر کچھ اس پر تھوکنے لگے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسے مکے مار مار کر کہنے لگے، نبوت کر۔ ملازموں نے بھی اسے تھپڑ مارے۔ اس دوران پترس نیچے صحن میں تھا۔ امام اعظم کی ایک نوکرانی وہاں سے گزری اور دیکھا کہ پترس وہاں آگ تاپ رہا ہے۔ اس نے غور سے اس پر نظر کی اور کہا، تم بھی ناصرت کے اس آدمی عیسیٰ کے ساتھ تھے؟ لیکن اس نے انکار کیا، میں نہیں جانتا یا سمجھتا کہ تو کیا بات کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ گیٹ کے قریب چلا گیا۔ جب نوکرانی نے اسے وہاں دیکھا تو اس نے دوبارہ پاس کھڑے لوگوں سے کہا، یہ بندہ ان میں سے ہے۔ دوبارہ پترس نے انکار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پترس کے ساتھ کھڑے لوگوں نے بھی اس سے کہا، تم ضرور ان میں سے ہو، کیونکہ تم گلیل کے رہنے والے ہو۔ اس پر پترس نے قسم کھا کر کہا، مجھ پر لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں اس آدمی کو نہیں جانتا جس کا ذکر تم کر رہے ہو۔ فوراً مرغ کی بانگ دوسری مرتبہ سنائی دی۔ پھر پترس کو وہ بات یاد آئی جو عیسیٰ نے اس سے کہی تھی، مرغ کے دوسری دفعہ بانگ دینے سے پہلے پہلے تو تین بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہوگا۔ اس پر وہ رو پڑا۔